عمل کا کارواں یسو، اے پاک وطن کے پاس یسو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واہل لقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سب سے پہلے تو میں جتنے میرے یہاں پہ چھوٹے یا بڑے بھائی تشریف فرما ہیں، میں آپ سب سے ایک گزارش کروں گا، جو یہ تھوڑا سا سائڈ پہ بیٹھے ہیں، چونکہ یہ سامنے نشستیں خالی ہیں، سارے یہاں پہ اکٹھے ہو جائیں تاکہ انٹریکشن جو ہے وہ ذرا آسان ہو جائے گا۔ جتنے یہ سائڈ پہ بیٹھے ہیں ذرا یہاں پہ سامنے تشریف لے آئیں۔ آج جتنی دیر بھی میں یہاں پہ آپ بھائیوں سے محو گفتگو رہوں گا، میری یہ خواہش ہوگی کہ یہ ہمارا سیشن، اس میں یہاں سے کوئی نہ تو لیکچر ٹائپ کوئی لیکچر ہوگا۔ میں یہ چاہوں گا کہ جتنی دیر بھی میں یہاں سے آپ لوگوں تک جو مجھے حکم دیا گیا وہ میں پہنچاؤں، اتنی ہی دیر آپ اٹینٹو بھی رہیں۔ اگر کوئی چیز کسی بھی لیول پہ سمجھ نہیں آ رہی، دوبارہ پوچھیں، پھر نہیں سمجھ آئی پھر پوچھیں، جتنی دیر تک کوئی چیز کلیئر نہ ہو میں نیکسٹ سٹیپ پہ موو نہیں کروں گا۔ اور سب سے پہلے میں آج کی جتنی یہاں پہ گفتگو ہوگی، میں اس کا موضوع جسے قرار دینا چاہتا ہوں وہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب کے وہ جملے ہیں جو میں نے اسی حال میں آ کے پڑھے، کہ انسان کو یا تو خود کام کرنا چاہیے یا کام کرنے والوں کا ہم کار ہونا چاہیے۔ ہم چونکہ یہاں پہ ایک جو کام جس مقصد کے لیے مجھے بلایا گیا ہے وہ ہے سی ایس ایس پی ایم ایس کمپیٹیٹیو ایگزامس کے حوالے سے آپ لوگوں کو جتنا ہو سکے اویئر کرنا، بتانا، وے فارورڈ بتانا کہ ہاؤ ٹو موو فار دس۔ اس میں ڈاکٹر صاحب کے جملوں کو دوبارہ میں بولتا ہوں کہ انسان کو یا تو خود کام کرنا چاہیے، یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، دائیں سائڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ انسان کو یا تو خود کام کرنا چاہیے یا کام کرنے والوں کا ہم کار ہونا چاہیے۔ بڑی ہی خوبصورت بات ہے، اسے آج کی اس محفل پہ اگر اس کی آپ اپلیکیشن دیکھنا چاہیں تو میں اسے آسان کر دوں۔ جتنے آپ یہاں پہ بیٹھے ہو، توجہ میری طرف رکھیے گا، جتنے آپ یہاں پہ بیٹھے ہو، یا تو آپ سب لوگوں کو انہی جملوں کو میں آپ پہ اپلائی کر رہا ہوں، یا تو آپ سب لوگوں کو خود کمپیٹیٹیو ایگزام میں آنا چاہیے۔ اگر خود نہیں آ سکتے تو پھر کم از کم جہاں جہاں پہ جائیں، جہاں جہاں پہ جائیں لوگوں کو اپنا ہمکار بنا کے، لوگوں کو اپنا ہمکار بنا کے جس قدر ہو سکے جو پھول آج آپ کو یہاں سے ملیں یہ آگے تک پہنچا دیں۔ یعنی آج کا جو، اور میں تہ دل سے شکر گزار ہوں آئی ایس او پاکستان کا کہ جنہوں نے مجھے چنا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس حد تک ہو سکے، اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کے کوئسچنز جتنے زیادہ ہوں گے، جیسے میرے سے پہلے وردی سپیکر آپ سے بات کر رہے تھے کہ جتنے آپ زیادہ کوئسچنز کریں گے اتنی زیادہ لرننگ ہوگی، اور آج کا جو سیشن ہے یہ کمپیٹیو ایگزامس کے حوالے سے، چونکہ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کون کس فیلڈ کا بیٹھا ہے، مجھے نہیں پتا، اب میں جاننا چاہوں گا، زیادہ ٹائم لگے گا، تو جس اسٹوڈنٹ کو جو سمجھ نہیں آئے گا وہ میرے سے دوبارہ پوچھے، میں انشاءاللہ کلیئر کر کے جاؤں گا۔ آج کی اس نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں، جیسا کہ برادر شجر بھائی پہلے آپ سے گفتگو فرما رہے تھے، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ میں سے یا ہمارے نوجوان آرمی میں ہوتے تو کون طالبان بناتا، آپ میں سے کچھ لوگ جوڈیشری میں ہوتے تو شک کا فائدہ دے کہ کون چھوڑتا، آپ میں سے ہی میں کہتا ہوں आप में से ही अगर ब्यूरोक्रेसी में लोग हों तो मैं नहीं समझता कि जो हमारे अहले तशय्यो के लोग दफातर में धक्के खा रहे होते हैं कि हमें एक छोटी सी परमिशन चाहिए, हमने मजलिस या मातमदारी कंडक्ट करवानी है उसके लिए हमें परमिशन चाहिए। मैंने अपनी इन आँखों से देखा हुआ है कि लोग कैसे धक्के खा रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप में से नौजवान वहाँ पर बैठे होंगे तो कम अज़ कम उन शियाज को, उन अहले तशय्यो को ये बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। ये कैसे मुमकिन है? CSS, PMS या जितने भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं फरिश्ते नहीं करते, वो आप ही जैसे जवान हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर आपको पता चल जाए, बर वक्त आपको इलम हो जाए कि हमने किस डायरेक्शन में चलना है, हमने किस तरफ जाना है, हमने क्या पढ़ना है, हमने कैसे पढ़ना है, तो मैं नहीं समझता कि वो मंजिल दूर हो। कि आप में से ही जितने जवान यहाँ पे बैठे हैं, आप में से ही मोस्ट ऑफ़ द पीपल्स विल बी इन ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो। ये तो था। और उसके बाद मैं अपना अगेन आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ खुर्रम शहजाद भट्टी, आवाज़ असिस्टेंट कमिश्नर UT एट चकवाल। सॉरी आई चेंज माई मीडियम, मैं AC चकवाल रहा हूँ। चुआ सैदन शाह मेरी यूटीशिप थी, उसके बाद आज जो मेरे पास असाइनमेंट है वो स्पेशल एजुकेशन की एस्टेब्लिशमेंट है। आगे हम चलते हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स की तरफ। एंड आई एम प्रोविंशियल मैनेजमेंट ऑफिसर, पर PMS ऑफिसर। नेक्स्ट करिएगा। आज की इस नशिस्त में पहले थोड़ा सा मैं, चूँकि मैं देख रहा हूँ लास्ट टाइम तमीर मिल्लत बजरिया तालीम जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आवाज़ आल्सो देर कुछ चेहरे मौजूद थे, शायद ज़्यादातर नहीं थे उसमें। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चलूँ ताकि जो नहीं थे वो भी साथ मिल जाएं। उस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने इस बात पे ज़्यादातर ज़ोर दिया कि PMS, CSS, कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स, उनमें आप लोगों का जाना ज़रूरी क्यों है। उसमें ज़्यादातर ज़ोर इसी बात पे था। और आई थिंक सो कि जितनी 2-3 मिनट मैंने पहले बात की है ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि क्यों जाना ज़रूरी है। अब हम आगे चलते हैं कि जाना कैसे है, वो मंजिल, वो आपकी डेस्टिनेशन, हाउ टू अचीव दैट गोल। तो पहली है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSS एग्ज़ामिनेशन। हम इसमें मेन फोकस आपका जो है वो CSS एग्ज़ाम पर रखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSS। जी नेक्स्ट। आज की इस गुफ्तगू का जो हम स्ट्रक्चर बना के आए हैं या जो हमने जिस तरीके से हमने बात करनी है, तो ये पॉइंट्स होंगे जिन पे मैं बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हमें ये प्रोफेशनल कैरियर चूज़ क्यों करना चाहिए। सेकेंडली, CSS है क्या। थर्ड वन, किस कदर CSS चैलेंजिंग है, कितना आसान है और कितना मुश्किल है। फोर्थ वन, ये जब आप अपना ये गोल रख लेंगे तो आपने, माय डियर सर्स एंड मैडम्स, आपने ये अचीव कैसे करना है। एंड देन गाइडेंस जो है वो किस हद तक आप लोगों को ज़रूरी है, इस पे हम बात करेंगे। और लास्ट वन जो है इसे मैं चाहूँगा कि प्रोलॉन्ग करूँ, पहले वाला पोर्शन मैं जल्दी ख़त्म करूं ताकि मैं क्वेश्चन आंसर्स जितने हो सकें वो मैं आपके बीच आके मैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एड्रेस कर सकूं, ये मेरी ख्वाहिश होगी। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट, एक जॉब होती है और एक कैरियर होता है। जॉब जो है वो आपको प्राइवेट सेक्टर भी ऑफर कर सकता है, उसमें भी अब में भी आप उसको भी कैरियर ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो बात करने का मकसद है, जो मैंने आगाज़ में चंद बातें आपसे की और शजर भाई की मैंने बातों को कोट किया, उन चीज़ों को बुनियाद बना के मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे अज़ीज़ ब्रादरम, इस दुनिया में हर इंसान की ख्वाहिश डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है आप में से कुछ नौजवान ऐसे बैठे हों जिनकी ख्वाहिश ये हो कि हमने अपनी लाइफ में मैक्सिमम जिस कदर हो सके हमने रुपया पैसा इकट्ठा करना है, ये हो सकता है और ये गलत भी नहीं है, ये मैन टू मैन वेरी करता है। हो सकता है किसी की ख्वाहिश ये हो, कोई ये चाहता हो। ऑन अदर हैंड ये भी हो सकता है कि कोई ये चाहता हो कि मैंने मैक्सिमम सर्विस डिलीवरी करनी है, मैंने लोगों की खिदमत करनी है, जिसे कहते हैं कि मैंने सेवा करनी है। तो आज का ज़्यादातर जो जिस शख्स को या जिस सोच को मैं यहाँ पे खड़ा होकर एड्रेस करूँगा, वो वाली सोच को एड्रेस करूँगा जो ये समझता है कि मैंने इस माशरे में लोगों को और अपनी कम्युनिटी को और पूरी पाकिस्तानी कौम को फिर वर्ल्ड में जाके मैंने सर्विस प्रोवाइड करनी है, मैंने खिदमत करनी है। और जज्बा खिदमत लेके जो नौजवान बैठे हैं, ज़्यादातर आज की बात उनसे होगी। इसमें पहली बात, जब आप CSS PMS कर जाएंगे, ये वो बात है, इसलिए कर रहा हूँ पहले कि जितने नौजवान बैठे हैं उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ज़्यादातर को तो आइडिया है, जिनको नहीं है, जब आप CSS कर जाएंगे यू विल बी असिस्टेंट कमिश्नर्स। पहले दिन जाके आप किसी तहसील की कमांड करेंगे, पूरी तहसील विल बी योर ज्यूरिसडिक्शन। सेकेंडली, इफ़ यू पास इन CSS एग्ज़ाम एंड यू कम इन फर्स्ट नंबर्स, टॉप 40s, टॉप 60s, यू विल बी ASPs, आप ASPs जाएंगे। आप जो 12 ग्रुप्स हैं CSS करने के बाद जो आपको मिलते हैं, यू विल बी देयर। और जहाँ पे भी जाएंगे योर ग्रेड विल बी 17। और मैं आपको अगेन कह दूँ, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड अदर जॉब्स विच प्राइवेट सेक्टर इज़ ऑफरिंग टू द पीपल्स। उसमें हो सकता है सैलरीज बहुत ज़्यादा हों, मैं ये नहीं कहता, सैलरीज बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो सर्विस डिलीवरी वाला काम है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो आज हम वे फॉरवर्ड आपको बता रहे हैं, सिर्फ ये वे फॉरवर्ड जो है आपको सर्विस डिलीवरी की तरफ लेके जाएगा, आपको एक ऑनरेबल जिसमें आप किसी न किसी लेवल पे किसी न किसी को फ़ायदा दे सकते हैं इफ़ यू वांट टू गिव। कंडीशन सब्जेक्ट ये है कि अगर आप देना चाहें तो। आज फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैरियर जॉब ये आप लोगों को क्लियर हो गया। ये मैं इसलिए नहीं ज़्यादा पढ़ के सुना रहा कि ये चीज़ तो आपके सामने है, आप पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ भी लीजिएगा। ये स्लाइड रीडिंग्स जो हैं मैं नहीं करूँगा, वो आपने खुद उतनी देर में देख लीजिएगा। मैं साथ और बात आपको कोई जो ज़रूरी है वो मैं कर देता हूँ। इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का जो कंपैरिजन दिया हुआ है उसमें ये है कि जी लॉन्ग टर्म है नो डाउट इट, और वो शॉर्ट टर्म। इसमें प्रमोशंस सिक्योरिटी मीन जॉब सिक्योरिटी, योर जॉब इज़ सिक्योर। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी की कोई खिदमत करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू सर्व द नेशन, इफ़ यू वांट टू सर्व योर कम्युनिटी, इफ़ यू वांट टू सर्व द कंट्री, मैं यहाँ तक कह दूँ इफ़ यू वांट टू सर्व योर एरिया, योर पीपल, योर ओन पीपल, योर फैमिली, यू कैन सर्व ओनली बाय गोइंग ऑन दिस वे। और वो वे कौन सा है? कंपेटिटिव एग्जाम वाला। अभी तक मैं सिर्फ बात इस पे कर रहा हूँ कि आपको CSS क्यों करना है, अभी तक मैंने आगे नहीं बताया कि कैसे करना है। अभी तक सिर्फ सबको मैं साथ लेके चलना चाह रहा हूँ कि मेरे अजीज़ बरादर मोहतरम, मेरे भाइयों, आपको ये CSS की तरफ जाने की ज़रूरत क्या है? अभी तक मैं सिर्फ इस पे बात कर रहा हूँ। जी नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो वो तो CSS के बगैर भी गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो मिल सकती हैं। कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स, जिसमें काफ़ी पढ़ना पड़ता है, जिसमें काफ़ी एक स्ट्रगल करना पड़ती है, हार्ड वर्किंग है, उसके बगैर भी तो गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती हैं। तो ये स्लाइड जो है वो क्लियर कर रही है कि CSS करके गवर्नमेंट जॉब में जाना और विदाउट CSS जाना, उसमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप CSS या PMS करके जाते हैं, PMS मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं, CSS है फेडरल लेवल पे एग्ज़ाम है, PMS आपके प्रोविंशियल लेवल का एग्ज़ाम है। CSS करने के बाद 12 ग्रुप्स हैं, आप उनमें जाएंगे। जब आप अपने अपने प्रोविंस में जाएंगे, आप सिंध वाले हैं वो सिंध से करेंगे, पंजाब वाले हैं वो पंजाब से करेंगे, KPK वाले, बलूचिस्तान वाले, GB वाले, वो अपने जब प्रोविंस से जाके करेंगे, दैट एग्ज़ाम विल बी कॉल्ड प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, PMS। तो जब आप ये एग्ज़ाम्स क्लियर करके जाएंगे, तो ये स्लाइड शो कर रही है व्हाट विल बी द डिफरेंस देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सुपीरियर सर्विस है। सेकेंडली, जब आप CSS PMS करके जाते हैं, देन यू बिकेम द पॉलिसी मेकर्स। आपने पॉलिसी बनानी होती है, आप बैठते हैं, आप सोचते हैं और आप पूरी नेशन को एक वे फॉरवर्ड देते हैं कि दिस इज़ द वे फॉरवर्ड ऑन विच योर नेशन, योर कंट्री मस्ट गो। जब आप PMS करते हैं, CSS करते हैं, तो ये है। और जब आप किसी और एग्ज़ाम के ज़रिए गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, देन ये नहीं है आपके पास। आपके पास जस्ट एक एग्जीक्यूशन है, वो चाहे आप पुलिस में एज ए ASI वो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, या चाहे आप किसी भी लेवल पे कर रहे हैं, उसमें पॉलिसी मेकिंग नहीं है, उसमें रूल्स मेकिंग नहीं है, उसमें सुपीरियरिटी नहीं है। सुपीरियरिटी विल गिव ओनली CSS। जब आप करेंगे तो आपका हायर सोशल स्टेटस, ग्रेट पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल सर्विस, मोटिवेशन लेवल इज़ हायर एंड अदर साइड यू कैन रीड फ्रॉम द स्लाइड। CSS PMS क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि ये एग्ज़ाम आपको इस सोसाइटी के उन चंद गिने चुने बंदों में शुमार करवाएगा जिनके हाथ में, बड़ी बात करने वाला हूँ, थोड़ा सा इसे संभालिएगा, जिनके हाथ में आपकी कौम की तकदीर है, आप उन नौजवानों में, आप उन लोगों में जाकर शुमार हो सकते हैं। हो सकता है किसी का ब्यूरोक्रेसी या किसी का पॉलिटिकल फैमिली से बैकग्राउंड हो, जो आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। लॉज तो पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन रूल्स, रेगुलेशंस, मोस्ट ऑफ द, यानी अभी जो बजट आएगा आपके सामने आएगा, आप तो TV पे हम लोग देखते थे ना पहले कि बजट बन गया जी, फलां मिनिस्टर ने आके तकरीर कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो तकरीर कर रहा होता है, वो जो बजट होता है, वो ये नहीं बनाते, पॉलिटिशियंस नहीं बनाते, वो आप में से कोई बनाएगा। अगर आप ये CSS PMS करके आप ऊपर जाएंगे, तो आप में से ही कोई होएगा जो ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, आप में से ही कोई बनाएगा। ये एक छोटी सी मैंने एग्जाम्पल दी, जस्ट टू मोटिवेट, जस्ट टू मेक योर माइंड कि आपने क्यों PMS CSS की तरफ जाना है जी। नेक्स्ट, नाउ कम टू CSS, व्हाट इज CSS जी। नेक्स्ट, CSS इज द अब्रीवेशन ऑफ सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। यू कैन राइट, इसलिए लिखें कि मैंने जो आज की इस बात का सरनामा, जो थीसिस, जो मेन थीम स्टेटमेंट मैंने आपको करार दी शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली साहब की, कि इंसान को या तो खुद काम करना चाहिए या काम करने वालों का हमकार होना चाहिए, आप लिखें इसलिए कि आपने काम करने वालों का हमकार भी बनना है। आपने जितने यहाँ पे बैठे हो, हम ये ISO फोरम से, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता आप लोगों से, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता, कभी भी नहीं करूँगा, और खुदा ना करे मुझे कभी ये एक्सपेक्ट करना पड़े कि ये बातें सिर्फ आप तक हैं। नहीं, ये बातें आप तक नहीं हैं, हम ये समझ रहे हैं, हमारी ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये जो बात हम एक भाई को बता रहे हैं, ये एक भाई को हम नहीं बता रहे, ये कम अज़ कम हम 200 पीपल्स को बता रहे हैं। क्यों? ये भाई जाएंगे अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में, जितने आपके दोस्त अहबाब हैं, उन सबको आप ऑन बोर्ड लेके आप यही बातें उन तक पहुँचाएँगे। और हो सकता है कि जिस तक आप ये बात पहुंचा दें वो इस पे अमल करके कल को आप लोगों में से आपका हमकार बन जाए, आपका साथी बन जाए और कल को इस कम्युनिटी की वो सेवा कर सके। तो ये बातें जो हैं ये लिखिएगा, इन पे पूरी तवज्जो कीजिएगा और ये बातें आपने सिर्फ अपने तक नहीं रखनी, ये बातें आपने अपनी कम्युनिटी में, अगेन आई एम सेइंग, ये बातें आपने जितने आपके मोमन दोस्त बाहर बरादर तशरीफ फरमाए हैं ये बातें आपने उन तक भी पहुंचानी हैं। तो CSS इज सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, कौन कंडक्ट करवाता है? FPSC, ये FPSC कंडक्ट करवाता है। वेयर इज़ FPSC? इन इस्लामाबाद, क्योंकि ये पाकिस्तान लेवल का है, फेडरल लेवल का है, तो ये है। CSS एग्जामिनेशन ये हर साल होता है, इसमें कोई वक्फा नहीं है कि इस साल हुआ और अगले साल पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हर साल होगा ये एग्ज़ाम। और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो नवंबर में होती है और 31 दिसंबर तक ये फाइनलाइज कर देते हैं कि कौन एग्ज़ाम में जो है वो अगले साल नेक्स्ट ईयर अपीयर हो रहा है। और ये एग्ज़ाम जो है वो 15 फेब यानी 15 या 14 फरवरी को हर साल इसका पहला पेपर होता है। इसके 12 पेपर्स होते हैं, 12 पेपर्स, डिटेल आगे आ रही है कि वो 12 पेपर कौन कौन से हैं। उन 12 पेपर्स में से, और ये याद रखिएगा, इसको मैं अगेन एंड अगेन जब कह रहा हूँ, जो पीछे मेरे बैठे तशरीफ़ फरमा हैं दोस्त, ये कोई पास करने वाला एग्ज़ाम नहीं है। इसमें ये नहीं है कि जिसने पास किया और वो बस उसे डिग्री मिल गई, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यू हैव टू कम्पीट इन दिस एग्ज़ाम। अगर तो आप कम्पीट करके जितनी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, से फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पानी का गिलास दीजिएगा, से फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल 300 बंदा चाहिए, अगर तो आप उन फर्स्ट 300 में आ गए तो फ़ायदा है, नहीं आए कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपको कम्पीट करना है, कम्पीट करके आगे निकलना है। ये पास करने वाला इसमें कोई चक्कर नहीं है, अगेन आई एम सेइंग, इसमें जिसने भी जाना है, जिसने भी जाना है, जो भी डिसाइड करेगा, एक चीज़ जहन में रख लीजिए, इसमें सीरियसनेस जो है, सीरियसनेस दैट इज़ ABC ऑफ दिस एग्ज़ाम। सीरियसनेस थोड़ा सा आसान कर दूं, इसमें ये नहीं है कि आप गए, आपने ये सोचा कि यार आई एम गोइंग फॉर CSS, इसमें अपीयर हो जाता हूँ इस साल, पास हो गया तो हो गया, ना हुआ तो ना सही, तो फिर इससे बेहतर है कि आप ना जाएं, क्योंकि इसमें सीरियसनेस जो है पहली चीज़ है। आप ये सोच के जाएंगे कि मैं जा रहा हूँ और मैंने करना है, अगर ये सोच है तो फिर इसकी तरफ जाइएगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा। वो जो कहते हैं कश्तियाँ जला के जाना, मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी जाएँ तो कश्तियाँ जला के जाएँ, लेकिन जब कैरियर काउंसलिंग करते हैं तो उसमें हमें ये भी सिखाया जाता है, बताया जाता है कि पीछे जो बी प्लान है वो भी आपका होना चाहिए। ए प्लान आपका CSS PMS है तो बी भी आपका होना चाहिए, साथ साथ चलना चाहिए। देन नेक्स्ट है, शुक्रिया, कि आपने CSS कर लिया तो आपकी जो एलोकेशन है, आपने किस डिपार्टमेंट में जाना है, कहाँ पे आपने जाके सर्व करना है, तो ये वाहिद एग्ज़ाम है कि जिसमें आपसे आपकी प्रायोरिटीज़ ली जाती हैं कि जी आप किस सर्विस में जाके सर्व करना चाहते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ तो आप लिख के देंगे, आप कहते हैं मैं PAS में जाना चाहता हूँ, आप कहते हैं मैं ऑडिट एंड अकाउंट्स में, आप मैं रेलवे में, मैं कस्टम्स में, ये 12 जो 12 ग्रुप्स हैं आप किसी में भी जाना चाहते हैं, आप प्रायोरिटीज़ देंगे लेकिन डिसाइड वो करेंगे, डिसाइड किस बात पे करेंगे वो आपका मेरिट होगा कि आपने किस हद तक मेहनत की हुई है, क्योंकि जितनी मेहनत करेंगे डेफिनेटली उतने आपके मार्क्स होंगे, उतनी आपकी वो पोजीशन स्ट्रांग होगी, जितनी पोजीशन स्ट्रांग होगी उतना ही आपको आपकी मर्ज़ी का डिज़ायर्ड ग्रुप आपको मिल जाएगा। ये 12 ग्रुप्स हैं, इन्हें ज़रा पढ़िएगा कि जब आप CSS कर जाएं तो ये 12 ग्रुप्स में आप फॉल करेंगे। पहला है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे DMG भी कभी कहा जाता है, जितने DCOs हैं, जितने असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, जितने आपके कमिश्नर्स हैं, जितने आपके सेक्रेटरीज हैं, इवन चीफ सेक्रेटरीज, दे आर फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और वो भी आप में से ही जाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे तो. सेकंड वन इज पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, PSPs. ASP से लेके IG तक सारे इस सर्विस में से होंगे. आप में से दोस्त जाएंगे अगर आप एफर्ट करेंगे जी. नेक्स्ट, ये 12 पढ़ लीजिएगा कि ये वो 12 ग्रुप्स हैं जिनमें आप आफ्टर CSS आप जा सकते हैं. जी नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसमें जो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा जो इसकी तरतीब है, सीक्वेंस है, वो आगे पीछे हो सकता है. पहले 4-5 तो ठीक है, उसके बाद ये चेंज भी होते रहते हैं, हर साल चेंज होते हैं, क्योंकि उसमें आपको याद होगा 2006 में, 2005 में DMG वाज ऑन, नहीं बल्कि मैं बात करूँ 2003 की, उसमें आपको याद होगा DMG जो है वो तीसरे चौथे पे चला गया था आफ्टर जब ये डिवॉल्व हुए, तो देन अब फिर जो है वो वन पे, तो ये चेंज होता रहता है, इसमें नहीं है जी. नेक्स्ट आगे, दीज आर द 12 ग्रुप्स एंड नाउ अब हम चलते हैं कि आपने वो CSS PMS कंपेटिटिव एग्ज़ाम आपने करना कैसे है, कैसे आप इसको लेके चलेंगे और ये कैसे होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन विल बी योर रिटन एग्ज़ाम. इस रिटन एग्ज़ाम में 1200 मार्क्स के आपने एक रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना है. आप ये 1200 मार्क्स क्लियर करेंगे, देन सेकेंड स्टेप जो यहाँ पे वाइवा लिखा हुआ है, इंटरव्यू, ये तब होगा जब आप फर्स्ट स्टेप क्लियर करके सेकेंड में आएंगे. तो लास्ट वन जो लाइन लिखी हुई है, सिलेक्शन प्योरली ऑन मेरिट कम रीजनल कोटास, थोड़ा सा इसे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. रीजनल कोटास क्या हैं? गिलगत बल्तिस्तान से कुछ लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं, राइट. सिंध से भी हैं, राइट. सिंध में अर्बन और रूरल का कोटा होता है. बलूचिस्तान, GB, इनका यह है कि मेरिट वाइज अगर आप थोड़ा सा नीचे भी फॉल करते हैं तो आपको अच्छा ग्रुप मिल सकता है वहाँ पे. लेकिन जो पंजाब वाले बैठे हैं, कितने पंजाब के लोग हैं, पंजाब वाले बंदे जो हैं टॉप 60 में आएंगे तो अच्छा ग्रुप मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत होती है. वजह, पंजाब में जो कंपटीशन लेवल है दैट इज़ वेरी हाई, उसमें आपको काफ़ी एफर्ट करना पड़ती है. टॉप 50, टॉप 60 में आएँ, अच्छा ग्रुप आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं. अच्छे ग्रुप से मुराद क्या है जो लोग तो जानते हैं, जो नहीं इस चीज़ को जानते मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ. अच्छे ग्रुप से मुराद ये है जो अभी 12 ग्रुप आपने पढ़े, इनमें हो सकता है कि कोई आप में से बैठा हो जो ये भी सोचता हो कि यार मैंने पोस्टल ग्रुप में जाके मैंने पोस्टल जो डिपार्टमेंट उसको मैंने ठीक करना है. ये भी सोच सकता है कि मैंने रेलवे में जाना है. लेकिन जो टॉप 4 or 5 डिपार्टमेंट्स हैं, वो PAS है, वो PSP है, वो फॉरेन सर्विस है जिसमें आप अम्बेसडर्स तक चले जाते हैं और आगे भी, तो ये सारे जो हैं, ये 4-5 आगे कस्टम्स है, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स हैं, ये 5-6 जो हैं ये टॉप में आते हैं. मैं इनको अच्छा और मैं बुरा किसी को नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि टॉप आपको ग्रुप्स मिल सकते हैं. नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, दैट्स इट, जस्ट ग्रेजुएशन। इसमें आपके पास MBBS है, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सब एलिजिबल हैं। इसमें ये मत समझिएगा, ये मत सोचिएगा कि किसी MBBS वाले को या किसी इंजीनियरिंग वाले को या किसी LLB वाले को प्रेफरेंस मिलेगी, नेवर एवर। प्रेफरेंस आपका रिटन एग्ज़ाम है, प्रेफरेंस आपकी वहाँ पे जो आपकी आपने कारकर्दगी शो कर दी वही है। यानी अब यहाँ पे मैं बात सिर्फ ये इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदा सिंपल ग्रेजुएशन कर रहा है और वो सोचता है कि यार ये मेरे तो फील्ड नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। ये फील्ड सबके लिए इक्वल है, जो जितना परफॉर्म करेगा वो उतना जो है वो इसमें उसे रिवॉर्ड मिल जाएगा। इसमें कट ऑफ डेट लिखी हुई है, ये इसे एज इट इज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बाज़ का चेंज होती रहती है। लास्ट टाइम आई थिंक सो 31 नवंबर या सितंबर थी शायद, तो ये न्यूज़पेपर से आप इन टच रहें तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एज रिलैक्सेशन में 21 to 28 है इसकी एज, 21 से 28 साल। और इसमें अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए तो होती होती है, बाकी भी एज रिलैक्सेशन पॉलिसी में इन स्पेशल केसेस वो अवेलेबल होती है, अदरवाइज नहीं जी। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये प्रीवियस कीजिएगा। इसमें जो मैं स्पेशल केसेस की बात कर रहा था वो ये है, शेड्यूल्ड कास्ट, उसके बाद आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, डिसेबल कैंडिडेट्स, इनके लिए ये स्पेशल केसेस हैं, इनमें जो है अवेलेबिलिटी है, अदरवाइज नहीं। 2 years ऐड कर लें उसमें, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। वो इसी में ही फॉल कर रहे हैं, वो फाटा भी इसी में ही है, सारे नहीं लिखे हुए यहाँ पे, वो न्यूज़पेपर आप क्लियरी जो है वो आपको क्लेरिफाई कर देगा। में फाटा भी है, बलूचिस्तान भी शायद कुछ एरियाज हैं रखे हुए, वो आप रूल्स जब आप पढ़ेंगे ना, CSS रूल्स हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें सारा ये क्लेरिफाई लिखा हुआ है। ये 2014 के हैं, इसी साल ये पिछले साल आए थे। ये कोटा है, जो मैं कोटा की बात कर रहा था, आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है, या आप समझें कि आपने बस टॉप 60 टॉप 70 में आना है, दैट्स इट जी। नेक्स्ट, नाउ रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम में है क्या? रिटन एग्ज़ाम में कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, 600 मार्क्स हैं इसके, 600 और 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स नेम ये सामने आपके लिखे हुए हैं, मैं पढ़ देता हूँ आप लिख लीजिए। इंग्लिश ऐसे है 100 मार्क्स, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन 100 मार्क्स, जनरल नॉलेज 300 हैं, और 300 में GK1, GK2, GK3, पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर है, एवरीडे साइंस है, ये 300 ये, और लास्ट में इस्लामियात लिखा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो रेड रेड कुछ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, हाईली सेंसिटिव, वो इसलिए लिखा हुआ है कि दीज थ्री सब्जेक्ट्स जो हैं ये हाईली सेंसिटिव इस सेंस में हैं कि ज़्यादातर जो रेशियो ऑफ फेलियर है वो इन्हीं में ही है, ऐसे कंपोजिशन इस्लामियात। डराने के लिए नहीं है, आपको जो यहाँ पे हमने लिखा है ये डराने के लिए नहीं है, इसलिए है कि अभी से आप अपने आप को प्रिपेयर करें कि ये हाईली सेंसिटिव एरियाज़ में हमने अपने कोई भी जो है वो कमी नहीं छोड़नी। ये नोट कर लें, ये 6 एरियाज़, ये 6 सब्जेक्ट्स। आप सब ये करिएगा, उन्हें थोड़ा नोट कर लेंगे। और इसके साथ लास्ट लाइन एक लिखी हुई है, इस पर थोड़ा सा गौर करिए। नो वरी, एवरीथिंग इज डूएबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट ज़रूरत जिस चीज़ की है, जितना कठिन इम्तहान है, जितनी कठिन मंजिल है, उतनी ही ज़्यादा एफर्ट चाहिए, बस और कुछ नहीं। और वो मैं सबसे पहले आपसे बात कर चुका हूँ कि जो करने वाला काम है वो सिर्फ और सिर्फ सीरियसनेस लेके आना है, अपने आप के अंदर अपने काज के साथ आपने सीरियस होना है कि मुझे ये असाइन किया गया टास्क, मैंने ये करना है। और यू आर द लकीस्ट पीपल्स, यू आर द लकीस्ट यंग मैन ऑफ दिस सोसाइटी कि आपको एक बाकायदा फोरम से ये चीज़ें मिल रही हैं। आप जाएं बाहर फील्ड में, देखें सोसाइटी में, देखें, ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं। हम आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जहाँ पे भी जाएं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, जहाँ पे आप हदीसे किसा के प्रोग्राम्स करते होंगे, आप जहाँ पे आपके गेट टुगेदर्स होते होंगे, वो करिए गेट टुगेदर्स, और उन गेट टुगेदर्स में ये बात ज़रूर करिए, ये बात अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। हो सकता है आपका कोई दोस्त इस बात को फॉलो करके वो आगे निकले। लास्ट में मैं इंशाल्लाह आपको सोर्सेज बता दूंगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपने इन्फॉर्मेशन्स कहाँ से लेनी है और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या पढ़ना है, वो जब हम क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे। आई एम अवेलेबल, जहाँ जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे मैं यहाँ पर हूँ जी। नेक्स्ट, देन 600 मार्क्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ये तो कंपलसरी थे, अब इसके बाद 600 नंबर के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं और आपने उनमें से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चूज़ करने हैं सब्जेक्ट। अटेंटिव हो के ये एक बात ज़रा जहनों में रखें, ये बात अभी जो मैं बात करने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू टॉक, अब क्या है वो, जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ जाएंगे, सिर्फ ये एक चीज़ है कि आपने ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना है कि जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका बैकग्राउंड है, जो आपने पढ़ा हुआ है, ये एक चीज़ है, ये टोटल नहीं है, ये याद रखिएगा, ये सिर्फ एक चीज़ है। सेकंड थिंग इज़ एंड सेकंड इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वो क्या है, वो ये है कि आपने वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो ज़्यादा स्कोरिंग हो, ये चीज़ जहन में रखिएगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट आपने चूज़ करने हैं, आप मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, आपने बिल्कुल कोई गलत चॉइस नहीं लेनी। बाज़ुकात होता ये है, आप एफर्ट भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, आप पास भी करते हैं, क्योंकि जो आपके कंपलसरी हैं वो तो आपने पास ही करने हैं, और अच्छे मार्क्स से हो जाएं तो बड़ी बात है। आपने जो मार्क्स स्कोर करने हैं, जो अच्छे अपना जो मेरिट इम्प्रूव करना है, वो ये वाला एरिया है, इस एरिया में आपने अपना मेरिट इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये आपके हाथ में है, आपकी ऑप्शन है कि आपने क्या चूज़ करना है। तो वो आप चूज़ करें जो आप समझते हैं कि ज़्यादा स्कोरिंग है, और वो आप कैसे समझेंगे, या आप लास्ट ईयर्स के आप रिज़ल्ट चेक करें। एक सोर्स अभी लिख लें, CSS फोरम, या अभी लिख लें, जो नेट यूज़ करते हैं गूगल पे जाएं, CSS फोरम पे जाएं, ज्वाइन करें उसको, नहीं ज्वाइन करना तब भी, CSS फोरम में आप जो भी चाहेंगे आपको मिलेगा वहाँ से। लास्ट ईयर्स के आप स्कोर चेक करें, ये नाम लिखें, आगे नाम आ जाएंगे, सब्जेक्ट नेम लिखें, लास्ट ईयर के स्कोर तकरीबन काफ़ी सारे दिए होते हैं, एक मिनट बेटा, वहाँ से आप जो है वो लेके आप डिसाइड कर सकते हैं। जो गाइडेंस होती है, गाइडेंस ज़्यादातर इसी एरिया में होती है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। और ये नहीं है कि जो 2003 में जो पॉलिसी थी वो 2016 में भी वही रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ये चेंज होती रहती है। अगर आप 2009-10 में पूछते किसी से तो आपको कहता कि अरेबिक इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट, आज अगर किसी से पूछेंगे तो वो कहेगा कि अरेबिक इज़ नॉट अ बेस्ट चॉइस। क्यों? अरेबिक जो है वो अब पूरी की पूरी आपको अरेबिक में ही अटेम्प्ट करना पड़ेगी, तो ये चेंज होता रहता है। जी बेटा, हाँ, वो आगे अभी डिटेल आ रही है जी। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप ए, अब आपने क्या करना है, ये सिर्फ पढ़ लें एक दफ़ा, इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको अब वेबसाइट पे जाएं, FPSC की वेबसाइट पे जाएं, आप CSS का सिलेबस परचेज करें, आपको ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिन में से आप चूज़ कर सकते हैं। मैं कोई नहीं कह रहा कि आप फलां को चूज़ कर लें, फलां को चूज़ कर लें, क्योंकि हो सकता है कि मैं यहाँ पे बात करूँ सोशल साइंसेस के हवाले से, आपका बैकग्राउंड सोशल साइंसेस माइंड में रख के मैं ये बात करूँ, हो सकता है आप में से किसी ने अकाउंटिंग अच्छी पढ़ी हो, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाओ। मैं बात करूँ यहाँ पर अकाउंटिंग को मद्देनज़र रख के, हो सकता है किसी ने इकोनॉमिक्स बड़ी अच्छी पढ़ी हो। तो ये सिर्फ आप पढ़ लें, इन्हीं में से आपने चूज़ करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग है 200, और अगर किसी को आती हो तो बहुत अच्छा एरिया है। इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जी। नेक्स्ट, हाँ ये ज़रा सारे नोट कर लें, एक ग्रुप में से मैक्सिमम 200 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं। चाहे वो एक सब्जेक्ट 200 का है तो आप एक ही लेंगे, अगर 100-100 के दो लें, लाइक एज ये आप ये पढ़ें एंड पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एड, बल्कि ये लिखा भी हुआ है सब्जेक्ट कैरिंग नॉट मोर देन 200 मार्क्स कैन बी ऑप्टेड, नोट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी ऑप्टेड इन कम्बिनेशन विद पब्लिक एड। ये चीज़ें साथ साथ आप जाएँगे ना ये वेबसाइट पर, FPSC की वेबसाइट पर जाएँ, ये सिलेबस आप परचेज़ करें, ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न मिल जाएंगी। और इसमें यह है कि आप एक ग्रुप में सिर्फ 200 मार्क्स मैक्सिमम, 100 आप कर सकते हैं बट मैक्सिमम 200 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं। ज़रूरी नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं, छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि आपने अपना 600 पूरा करना है। वो आप 600 सिर्फ ये होगा कि एक ग्रुप में से आपने 200 लेने, चाहे बाकी सारे छोड़ दें, वो आप पे है, क्योंकि ये काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, मेरे ख्याल में 32 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपने 6 कोई से चूज़ करने हैं जी। नेक्स्ट, ग्रुप बी, पॉलिटिकल साइंस एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री। एग्री यूनिवर्सिटी से कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? माशाल्लाह अच्छी तादाद है। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री अभी तक ये बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स जा रहे हैं, आप लोगों के हैं ये दो इसलिए मैंने बात कर दी, अभी तक बड़े अच्छे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, जर्नलिज्म है। सोशियोलॉजी और जर्नलिज्म ये उन लोगों के लिए जो जिनका बैकग्राउंड सोशल साइंसेज का है, जो वैसे जिनका इंटरेस्ट है, वो चाहे उन्होंने MBBS भी किया हुआ है, वो भी इसे कर सकते हैं, जो अच्छे सब्जेक्ट्स हैं ये जी। नेक्स्ट, ये देखें हर एक में जो नीचे रेड बॉक्स बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट्स कैरिंग नॉट मोर देन 200 मार्क्स कैन बी ऑप्टेड, 200 मार्क्स मैक्सिमम आप एक में से ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं आप पूरे का पूरा जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये ग्रुप डी आ गया आपके सामने, इसमें फिजिक्स है, जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी है। BSc's वाले कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? माशाल्लाह अच्छी रेशो है। आप लोग भी इसमें से जो अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा जिस पे आपकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है वो रखिएगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी डिग्री अगर MSc फिज़िक्स भी है और मुझे ग्रिप नहीं है, तो फिर मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए कि यार मेरी डिग्री इसमें है, मैं कहीं और क्यों जाऊँ, क्योंकि इसमें आपने मैक्सिमम स्कोर करना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैक्सिमम स्कोर आपने कर लिया, चाहे वो मैं BSc वाला बंदा हूँ, मैंने सोशल साइंस के सब्जेक्ट रख के मैंने मैक्सिमम स्कोर कर लिया, आई एम द विनर बस। बाकी ये है कि अपने सब्जेक्ट्स में जाएंगे तो हो सकता है थोड़ी आसानियाँ हो जाएं, क्योंकि वो बैकग्राउंड होता है, पहले पढ़ा हुआ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसी में जाएं जी। चेक करना पड़ेगा, ये मेरे ख्याल में चेक कर लें, 100-100 चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, इसे होगा आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने नहीं बनाई जी। नेक्स्ट, ये मुझे ISO की तरफ से मिली है जी। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है 200 मार्क्स, इंडो पाक हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, यानी ये पूरे का पूरा पोर्शन हिस्ट्री का है। इसमें आप यूरोपियन हिस्ट्री ले सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका आप ले सकते हैं। ये इन में से भी मैक्सिमम 200 मार्क्स। आपने कोई भी हिस्ट्री लेनी है तो मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे जी। नेक्स्ट नेक्स्ट, कोई एलएलबी डिग्री होल्डर बैठा है यहाँ पे या स्टूडेंट ऑफ लॉ? वन मैन। ये इनमें से आप लोग चूज कर सकते हैं जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं। जो लॉ ग्रेजुएट्स नहीं भी हैं उनके लिए भी इनमें दो तीन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो वो चूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ दोज इज़ इंटरनेशनल लॉ एंड मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, ये भी चूज़ किया जा सकता है बाय दोज पीपल्स हु आर नॉट एलएलबी डिग्री होल्डर्स। लेकिन जो जनरल लॉ है वो मैं इस फोरम से, जनरल लॉ इस फोरम से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इसलिए कि जनरल लॉ बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है। अगर आप साथ साथ अपना जुडिशियल एग्ज़ाम, जुडिशरी का एग्ज़ाम आप साथ प्लान कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट यू माय सन, अगर आप साथ साथ जुडिशरी का एग्ज़ाम भी प्लान कर रहे हैं तो फिर आप ज़रूर जाएं। अदरवाइज़ जो है लॉ जर्नल इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि वो ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है उसमें। यह जस्ट फॉर वन मिनट, इसमें यह है कि अगर आप लॉ जर्नल की तरफ जाते हैं तो जो एलएलबी डिग्री होल्डर बैठे हैं आप इनसे कंसल्ट कीजिएगा। उसमें सिलेबस इतना है कि होल सिलेबस ऑफ सीएसएस इज़ ऑन वन साइड एंड लॉ जर्नल फॉर 200 इज़ ऑन अदर साइड, तो लॉ जर्नल जो है उसका सिलेबस फिर भी ज़्यादा है। तो इस हवाले से जी बेटा, इन्हें इसलिए किया गया है कि ये टू सम एक्सटेंट ज़्यादा स्कोरिंग है, इन्हें इसलिए किया गया। इसमें अगर आप, मैं करता तो मैं इंटरनेशनल लॉ को भी साथ ही ब्लू कर देता जी। इंडो पाक हिस्ट्री इज अ गुड चॉइस, बट ये जवाब आपको इधर से ही मिला, अंदर से ही को बोला कि ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप उस पर अपनी ग्रिप बना लें, अच्छी आप उस पर एफर्ट कर लें, तो फिर इंडो पाक हिस्ट्री बुरा चॉइस नहीं है, अच्छा है। लेकिन ज़रूरत क्या है फिर, अगर आप इंडो पाक हिस्ट्री रखें और साथ ये सोचें कि जो मैंने पेपर वन है वो, जो मैंने पाक स्टडीज़ में पढ़ लिया वो काफ़ी है, तो ये बात गलत है। उसकी वजह ये है कि हिस्ट्री में आपने चीज़ों को एज़ इट इज़ लेना होता है, जबकि इंडो पाक, जबकि पाक अफेयर्स में आपने चीज़ों को प्रो पाकिस्तानी बन के लेना है। ये चीज़, ये ज़रा मैं दोबारा क्लेरिफाई कर दूँ, पाक अफेयर्स में आपने चीज़ों को प्रो पाकिस्तानी बन के लेना है, जबकि जो आपका इंडो पाक हिस्ट्री है उसमें आपने जाके चीज़ों को, यानी आपने फैक्ट्स देने हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें, अगर इतना ये माइनर सा डिफरेंस आप उस वहाँ से वहाँ पे क्लियर कर दें तो अच्छा स्कोर देता है।
इंडो पाक में ये दो बार मैंने ये किया कि पिछले वाले दो,
रिपीट कीजिएगा प्लीज। पीछे भी जाएंगे वो, आप सिलेबस चेक करेंगे ना तो वो आपको सिलेबस सारा वो शो करेगा। उसमें 1857 से नहीं है, वो मोहम्मद बिन कासिम या उससे भी ज़्यादा, वो मोहनजोदड़ो वो सारा उसमें है। नहीं है वो लॉ में नहीं है, लेकिन है इसी में ही है, है इसी में, यानी वो बॉक्स, वो जो बॉक्स है वो वही है लेकिन लॉ में नहीं है जी। तो ये वो हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अभी शायद एक लैंग्वेज का रह गया है, वो भी आ जाता है। इनमें से आपने जो, सिर्फ ये तो एक ओरिएंटेशन आपको मिली ना कि क्या क्या है, क्या कैसे आपने करना है। आप सोर्सेज मैंने बताया आपको, एक सीएसएस फोरम है, आप उस पे जाएं, एफपीएससी की वेबसाइट्स पे जाएं, गूगल करें एफपीएससी आ जाएगा, एफपीएससी सीएसएस सिलेबस, ये चीज़ें नोट करें। नोट इसलिए आपने करनी है, आपको तो याद रह जाएंगी, लेकिन डॉक्टर शहीद मोहम्मद अली नकवी साहब का फरमान, आपने हमकार भी बनाने हैं, खुद काम तो करना ही करना है, आपने हमकार भी बनाने हैं। तो हमकार बनाने के लिए चीज़ें आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि आप ये सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आप अपने दोस्तों तक पहुँचा सकें। अभी तक जितनी देर ये ले रहे हैं उतनी देर तक अगर कोई और क्वेश्चन है, यू कैन पुट योर क्वेश्चन।
सर ये जो
आपने एक बॉक्स में जो ए बी सी डी ये लिखे हुए, आप एक में से मैक्सिमम 200 मार्क्स इससे अबव नहीं जाएंगे, 100 आप कर सकते हैं, 100 का, 100 से कम तो फिर है कोई नहीं।
सर दूसरी बात, आपने जो सब्जेक्ट चॉइस किए थे
मेरी चॉइस, इस फोरम से मैं अपनी चॉइस नहीं बताऊंगा। उसकी वजह यह है कि हो सकता है मेरा बैकग्राउंड, स्टडीज का बैकग्राउंड वो कोई और हो। यहाँ इस फोरम से बताने का नुकसान ये होगा कि जो अभी तक फ्रेश माइंड्स हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं चेहरे, आप तो समझ जाएंगे और आप अभी उस चीज़ को इस तरीके से लेंगे कि ये चीज़ जो है वो अच्छी है। हो सकता है यहाँ पे जो फ्रेश माइंड है वो ये समझ लें कि यही चीज़ अच्छी है ये, इसलिए मैं इस फोरम से नहीं बताऊँगा, ये आपको इंडिविजुअली या एंड पे मैं बता भी दूँगा, यहीं पे बता दूँगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी जो फ्रेश माइंड्स हैं मैं चाहता हूँ कि वो इक्वलाइज करें हर चीज़ को, हर चीज़ को इक्वल फुटिंग पे, इक्वल बेसिस पे जाकर लें। एट द एंड आई इंशाल्लाह शेयर विद यू। अच्छे हैं, शर्त ये है कि आपका इसमें एप्टीट्यूड है, आप पढ़ना चाह रहे हैं, आपको अच्छे लगते हैं, बैकग्राउंड है, पढ़ के थोड़ा सा देख लें, अगर आपको अच्छे लगते हैं, आप समझते हैं कि मैं इसे टैकल कर जाऊंगा, लें अच्छे।
नेक्स्ट वन ग्रुप इज ग्रुप जी, देर इज फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी फिलोसफी जो है यू आर फ्रॉम शिया मकतबा फिकर, आई रिकमेंड यू पीपल चाहे CSS में पढ़ें या CSS के बाद पढ़ें या पहले पढ़ें, फिलोसफी ज़रूर पढ़िएगा। फिलोसफी जो है वो इंसान को, जो पहले यहाँ पे मेरे वर्दी स्पीकर बात कर रहे थे कि क्वेश्चन करें हाउ व्हाई व्हाट विच, ये सारी चीज़ें आप में डिवेलप करती है, वो फिलोसफी है और स्कोरिंग भी है, चेक कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। साइकोलॉजी तो डेफिनेटली जो मेडिकल के यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके लिए तो बड़ा फेवरेट एरिया है, आप इसे भी देख लीजिएगा जी। नेक्स्ट नेक्स्ट दैट एरिया इज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, जो इसमें पंजाबी बैठे हैं, अगर पंजाबी पढ़नी और लिखनी आती है तो ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, अगर आती है तो, अगर नहीं आती तो फिर तो एक और ही बात है ना, अगर आती है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी के माइंड में अगर ये हो कि मैंने तो अपने पूरे एकेडमिक कैरियर में कभी पंजाबी पढ़ी नहीं, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज, मैंने भी नहीं पढ़ी थी, बट आई स्कोर्ड 84, 85 and 83 इन ऑल माई अटैम्प्ट, पढ़ी मैंने भी नहीं थी पहले, तो इसलिए बात कर रहा हूँ कि पंजाबी इज़ अ गुड चॉइस अगर आपको लिखनी और पढ़नी आती है तो। लेकिन पंजाबी इज़ ओनली फॉर पंजाबीज, पंजाबी इज ओनली फॉर पंजाबीज, सिंधी इज़ फॉर सिंधीज एंड पश्तो इज़ फॉर ऑल द पीपल्स हु आर फ्रॉम KPK, बलोची। तो करें, लेकिन बेहतर यह कि पश्तो करें, क्योंकि वो जिस तरीके से आप पश्तो को बता सकेंगे और जिस तरीके से आप देखें ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो पंजाबी यहाँ पे बैठे हैं, लोकगीत गिदा थाल माहिया ढोला दीज ऑल थिंग्स, जिस तरीके से आप पंजाबी जानते हैं, हो सकता है आप भी जानते हों लेकिन उस तरीके से नहीं जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने तो अपनी आंखों से देखे भी होते हैं ना ज़्यादातर चीज़ें, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। आई रिकमेंड फ्रॉम दिस फोरम कि अगर आप जाएँ तो जो KPK वाले हैं वो पश्तो लें, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड चॉइस, और सिंधी जो हैं, सिंधी इज़ अ गुड एरिया फॉर यू पीपल्स। तो ये रीजनल लैंग्वेज मैं इसलिए थोड़ा सा इस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ज़्यादा स्कोरिंग होती हैं अगर आप अच्छा इसे कर लें तो। नेक्स्ट, नेशनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, इसमें इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू है, पर्शियन है, अरबिक है। इज़ क्लेरिफाई कर दूँ यहाँ से, पर्शियन और अरबिक आपको उसी लैंग्वेज में पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आप अरबिक लेते हैं, कोई आपको कहता है, क्योंकि ये 2015 से पहले यही प्रैक्टिस थी, कि अरेबिक आपने या तो उर्दू में करना होता था पेपर या फिर इंग्लिश में करना होता था, लेकिन अब ये प्रैक्टिस ख़त्म, अब आपको अरेबिक जो है वो सिर्फ अरेबिक में करना होगा, पर्शियन जो है वो सिर्फ पर्शियन में करना होगा, बाकी उर्दू तो डेफिनेटली उर्दू में ही करना होगा, इंग्लिश जो है वो इंग्लिश में है। तो ये पर्शियन और अरेबिक जो है ये क्लैरिफाई कर लें। नहीं, इतनी मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको अरेबिक आती है, अरेबिक और पर्शियन आपको लिखनी आती है, पढ़नी आती है, तो फिर जाएं, स्कोरिंग भी है। लेकिन वो जो पहले बात हुआ करती थी ना कि नहीं भी पढ़नी आती तो खैर है क्योंकि पेपर तो उर्दू या इंग्लिश में करना है, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, अब आपको वो लैंग्वेज सीखना पड़ेगी, अदरवाइज वो नहीं। जी बेटा, उर्दू इज़ अ गुड चॉइस, लेकिन ये है कि फिर ये थोड़ा वास्ट है, इस पर उतनी एफर्ट लगाना पड़ेगी, उर्दू इज़ नॉट अ बैड चॉइस। ये लैंग्वेज जितनी भी हैं ये बेहतर हैं, ठीक है, एरियाज अच्छे हैं। जी, आपस में बातें नहीं, ये मुझे बड़ा इरिटेट करती है, आपस में नहीं, मैं यहाँ पे हूँ ना जितनी देर, आप मेरे से जो पूछेंगे मैं बताऊँगा। नहीं, ज़रा रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन।
सेपरेट हैं 600, ये सेपरेट है। इसमें जो आप करेंगे ना, इससे फॉर एग्जांपल 200 मार्क्स का आप करते हैं, अरेबिक चूज करते हैं या पर्शियन चूज करते हैं, सिर्फ वो 200 नंबर जो है वो आपने उस लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना है, बाकी नहीं।
लिटरेचर है, टोटली लिटरेचर, ये सारा लिटरेचर आएगा, मैं जितने पोइट्स ये वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। जी,
इस्लामियात
का सिलेबस और है, इस्लामिक स्टडीज जो कंपलसरी है, जहां पे हमने हाईली सेंसिटिव भी लिखा हुआ है, उसका सिलेबस और है। जो इस्लामिक हिस्ट्री है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसका मतलब आपस में थोड़ा बहुत लिंक तो हो सकता है, बातें तो हो सकता है, खुतबा हिजतुल विदा उसमें भी हो, उसमें भी हो, लेकिन उसको टैकल करने का एस्पेक्ट और है, इसका और है। फ़र्क क्या है, उसमें आपने एज ए मुस्लिम लिखना है, इसमें आपने एज ए हिस्टोरियन लिखना है। हिस्टोरियन जो होता है उसका कोई मज़हब नहीं होता, क्योंकि हिस्टोरियन जो है उसने फैक्ट देने हैं, और जो इस्लामिक स्टडीज़ जब आप कर रहे होंगे देन यू आर अ मुस्लिम, देन आपने इस्लाम को डिफेंड करना है, हर चीज़ को आपको वही को डिफेंड करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए इस्लामियात में, क्योंकि इसको मैं अभी थोड़ा क्लेरिफाई कर दूँ, हाईली सेंसिटिव हमने क्यों लिखा हुआ है, लास्ट टाइम का आप रिजल्ट चेक करें 2014 का जो आया रिटर्न रिजल्ट ऑफ CSS, उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर फेल इन इस्लामियात। वो क्यों फेल हो जाते हैं, उसमें जब आप ये करते हैं ना, जो हमारी अप्रोच लास्ट क्लासेस में रही होती है कि जी कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, और उसके बाद हम उसके फ़ायद और आगे उसके बेनिफिट्स और लॉसेस, यहाँ पर वो अप्रोच नहीं है, अप्रोच डिफरेंट है। यहाँ पर आपने लॉजिकल होके चलना है, बस दैट्स इट। अगर आप लॉजिकली पेपर को अटेम्प्ट कर गए तो आप इसमें नहीं फेल होने लाले, लेकिन ये कि अगर आप इसको लॉजिकली नहीं लेते, से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ इस्लामियात का, सॉरी हम इस्लामियात की थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हुआ रेज, तो उसको थोड़ा एड्रेस करना चाह रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल आप हम लास्ट ईयर्स में तो हम यही पढ़ते आए ना कि नमाज क्या है, नमाज के फ़ायदे और नुकसान, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएगा तो वो, अगर रोज़े पे क्वेश्चन आता है, अगर ज़कात पे आता है, तो वो ये क्वेश्चन आएगा CSS में कि आप क्या समझते हैं कि जो इस टाइम हमारी मुआशी बदहाली है, ज़कात इसका कोई हल दे सकती है, ये क्वेश्चन आएगा। और इस क्वेश्चन को से फॉर एग्ज़ाम्पल ये आता है या इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने इनको बस लॉजिकली आप लेके चलेंगे, लॉजिकली लेके चलेंगे, और लॉजिकल से मुराद ये नहीं है। और एक चीज़ सारे नोट कर लें यहाँ पे, इस्लामियात के पेपर में आपने करंट अफेयर और इस्लामियात में डिफरेंस क्रिएट करना है। वो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से पूछेगा कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो है ही करंट अफेयर का। वो आपसे पूछेगा कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब, आजकल ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब जो चल रहा है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वो कहते जी ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब जो है इस्लाम उसकी इजाज़त देता है या नहीं देता, दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर, बट ही इज़ आस्किंग इन इस्लामियात यू हैव टू अटेम्प्ट इन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। वो क्या है, यू हैव टू कोट कुरानिक वर्सेस, अहादीस नबवी एंड ऑल द कोटेशंस विच यू कैन डू देयर। आपने उनको साथ साथ चलाना है। ये अप्रोच होगी ना आपकी तो आप इस्लामियात में नहीं जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग। देखो जब आप CSS की तरफ जा रहे हैं ना, जब आप CSS एग्जाम में जा रहे हैं, एक चीज जहन में रखिएगा कि ये कोई वन डायमेंशनल स्टडी नहीं है। ये नहीं है कि आप इस्लामियात पढ़ रहे हैं तो आप कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं तो काफ़ी है, नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे आपने बात की कि उसमें इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक सिस्टम्स, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, उसमें मॉरलिटी के जितने भी इस्लाम के जो सारा कुछ है, अप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज, दीज आर द प्री रिक्विजिशंस फॉर ऑल दीज पेपर्स। और ये एक पेपर में काम नहीं देंगे, ईच एंड एवरी पेपर जो है वो इन्हीं एरियाज पे घूमेगा, वो आपका नॉलेज ही चेक कर रहा होगा। और नॉलेज चेक करने का इस एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर है इसका तरीका कार थोड़ा डिफरेंट है। जो आप हमारे एकेडमिक कैरियर्स में एग्जामिनर्स होते हैं वहाँ पे हम कुछ चीज़ें क्रैम करके भी चले जाएँ तो चल जाता है काम, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन देनी है उन चीज़ों की। अभी से सोचें कि इस चीज़ की एप्लीकेशन क्या है। जब आप अकीमुस्सलात वातुज़्ज़कात वर्क मर्राकिन, जब इस किस्म की आयात भी पढ़ें तो आप जहन में सोचें कि ये आयत मेरी सोसाइटी को बेहतर कैसे कर सकती है। बस यही अभी से इसे अप्लाई करना शुरू कर दें, दैट इज़ योर प्रिपरेशन। ये CSS जब आप प्रिपेयर करेंगे, इस फील्ड में आप जाएंगे, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको आपका नॉलेज जो है, जो आपके पास अवेलेबल नॉलेज है उसकी अप्लीकेशन आपसे मांगेगा बस। Now come to the selecting optional subjects। तो इसमें वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको साथ साथ चीज़ें बता दी हैं। ये स्लाइड जो है उसमें सिर्फ ये है कि जो साइंस वाले हैं वो साइंस पे ज़्यादा फोकस करें, जो सोशल साइंसेज वाले हैं वो एरियाज़ उनके लिए बेहतर हैं। और इसके अलावा जो लैंग्वेज है उसके लिए लिखा होगा कि कमांड उसमें अगर है आपके पास तो बेहतर है। और साथ जो है, जो एक चीज़ इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जब आप ये कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेके चलें, इनको आप प्रिपेयर करें, इनको आप देखें, इन पे सोचें, तो पास्ट पेपर्स को आपने ज़रूर अपने सामने रखना है। विदाउट पास्ट पेपर आपने कभी भी पढ़ना नहीं है, ये याद रख लीजिएगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इस्लामियात, you are preparing your essay, if you are preparing your English Pressy, तो बस उसे prepare ही नहीं करते रहना बल्कि check करना है कि वो पूछता क्या है। यानी past paper ये चीज़ लिख लें बेशक, आपने अपनी preparation start भी जो है वो past paper से करनी है और आपने end भी past paper पे करनी है। पहले दिन जब आप start लें तब भी आप past paper पढ़ें, और last day जब आप अपनी preparation को finalize कर रहे हैं तब भी आप past paper को attempt कर रहे हों। फिर आपने अटैम्प्ट करने हैं, अभी सिर्फ आपने देखना है कि इसमें वो पूछता क्या आपसे। जी नेक्स्ट। ये वो क्वेश्चन है, हाउ चैलेंजिंग CSS इज। मेरे ख्याल से मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ ये कि जो ये अप्रोच है कि चले जाएंगे, हो गया तो हो गया, ना हुआ तो ना सही, ये अप्रोच लेके यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। इस फील्ड में एटलीस्ट इस फील्ड में जाएं, लोग ही करते हैं, फरिश्ते कोई नहीं है, आप ही जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप ही कर सकते हैं, आप ही करेंगे। लेकिन आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आई एम गोइंग फॉर दिस एग्ज़ाम एंड आई विल बी विनर ऑफ दिस गेम। जाएं आपका हो जाएगा, सिर्फ ये अप्रोच चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, मैंने करना है। उसमें फिर स्टडीज़ आवर्स की बात करें, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, मैं कभी नहीं कहता कि इसमें 16 घंटे 17 घंटे पढ़ना है और इसमें इतने घंटे पढ़ना है, इसमें मैक्सिमम पढ़ना है, चाहे आप जितने मर्जी मैक्सिमम पढ़ लें, इसमें ये है
जी। नेक्स्ट,
ये स्लाइड शो कर रही है कि किस हद तक ये चैलेंजिंग है, इसमें लक फैक्टर भी, लेकिन लक फैक्टर का मैं कायल, सॉरी टू से, हार्ड वर्क जब आप करते हो, जब आप मेहनत करते हो, और बीइंग शाइट्स हमारा इस चीज़ पे बिलीव है कि इंसान की किस्मत तो होती होती है, लेकिन अगर आप खुद कुछ नहीं करेंगे तो किस्मत आपको कुछ नहीं देगी। तो अगर आप खुद करेंगे तो ये भी हमारा बिलीव है कि अगर आप खुद ऑनेस्टली और प्रॉपर जितनी चाहिए वो मेहनत कर देंगे तो फिर किस्मत आपको पीछे नहीं छोड़ेगी। आपकी बात कर रहा हूँ, जस्ट टॉकिंग अबाउट यू पीपल्स, वो ये नहीं कि जो यहाँ पे बैठे, आई एम टॉकिंग अबाउट माय मकतबा फिकर, ये स्पिरिचुअल, ये रूहानी तौर पे एक बात जो जिस पर जिसका मैं कायल हूँ, जिसको मैं समझता हूँ कि अगर हम मेहनत कर लें तो फिर किस्मत हमें पीछे नहीं छोड़ेगी, सिर्फ मेहनत की बात है। तो इस सारी स्लाइड का क्रक्स हार्डवर्क, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, ने हार्ड वर्क कर लिया तो आप पीछे नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, स्टडी अप्रोचेस, इसमें दो किस्म की स्टडी अप्रोच हो सकती हैं, एक सिलेक्टिव है एक थारोली है। ये थोड़ा सा इसमें ना मैं डिफरेंस क्रिएट करूँगा, इसे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जब आप अप्रोच की बात करते हैं तो जब आप सिलेक्टिव जाएंगे तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस टॉपिक में से आपने सिलेक्टिव जाना है, नेवर एवर। आपने करना क्या है, से फॉर एग्जांपल आप इस्लामियात को प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो इस्लामियात तो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आपने सिलेक्ट करने हैं टॉपिक्स। सिलेक्ट क्या करना है, टॉपिक्स कहाँ से आपने देखने हैं, आपके पास्ट पेपर्स, आपका सिलेबस। आपने जब सिलेक्ट कर लिए देन उसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, जो आपके टॉपिक्स हैं, से फॉर एग्जांपल आपके 25 टॉपिक्स निकला है कि मैंने 25 प्रिपेयर करने हैं, और इतने ही तकरीबन बनते हैं इस्लामियात में, फिर उन्हें थॉरली आपको पढ़ना पड़ेगा बस। यानी आपने जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपने सिलेक्ट करने हैं, देन उसे आप थॉरली चलाएंगे। इसमें जो बुक्स हैं वो कोशिश कीजिएगा जो PPSC जो FPSC ने रिकमेंड की हुई हैं, आप उनकी तरफ ज़्यादातर जाएँ, और आगे जो गाइडेंस है, से फॉर एग्जांपल आप किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से गाइडेंस लेते हैं या आप किसी एकेडमी से गाइडेंस लेते हैं, तो जो नोट्सीज हैं अगर तो अच्छे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप जो है वो बुक्स पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बुक्स जो हैं वो आपको बड़े अच्छे तरीके से और वो अप्रोच देंगी जो एग्जामिनर को चाहिए वहाँ पे। जी नेक्स्ट, इसमें वही है, कमिटमेंट चाहिए, डिसाइड करें, आप एक फॉर्मल स्टडी प्लान बनाएं कि फलां मंथ में मैंने फलां चीज़ें करनी है। वही चीज़ें जो आप अभी तक करते हैं, हर लेवल पे हर स्टूडेंट करता है, वो एक टाइम टेबल बनाता है, वो एक अपना स्टडी प्लान सेट करता है कि मैंने अप्रैल में ये करना है, मैंने मई में जाके ये करना है, मैंने जून में ये करना है, तो ये वो सारी चीज़ें जी। नेक्स्ट, लास्ट पे जाइएगा, प्रीवियस, ये एक है स्किल डेवलपमेंट, अपने अंदर स्किल डेवलप करें बस। वो स्किल क्या है, से फॉर एग्जांपल जब आप बात कर रहे हैं ऐसे की, जब आप बात कर रहे हैं इंग्लिश की, जब आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो अपने अंदर स्किल डेवलप करें, और जो राइटिंग स्किल है वो सबसे पहले ज़रूरी है। और ये चीज़ नोट कर लें, डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 पेज इन इंग्लिश आप डेली लिखा करें, यह आपकी स्किल जो है, राइटिंग स्किल जो है इंग्लिश में, वो डिवेलप कर देगी। डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 पेज आप जितना मर्ज़ी पढ़ लें, जितना मर्ज़ी आप याद कर लें, जब तक आप लिखेंगे नहीं तो वो फ़ायदा नहीं होगा जी। नेक्स्ट, इसमें सब्जेक्ट का नॉलेज थॉरली उसे पढ़ें, रिसर्च टाइप, ये थोड़ा सा इसे माइंड में ये रखें कि जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि उसने आपसे वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप पे पुट कर देगा। जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, ये एक वर्ड नोट कर लें, एनालिटिकल स्किल्स ये ज़रूरी हैं, एनालिटिकली चीज़ों को भी एनालिटिकली देखें, वो जो क्रैमिंग वाला सिस्टम था वो नहीं है, एनालिटिकली इन चीज़ों को देखें जी। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपका स्टडी प्लान होगा या जिस तरीके से आप पढ़ेंगे, कितना आपने पढ़ना है। ड्यूरिंग एग्ज़ाम जो है वो लिखा हुआ। और दो किस्म की, ये भी चीज़ नोट कर लीजिए, दो किस्म की जो है वो मेहनत होती है। एक होती है जो आप सारा साल करते हो, एक होती है जो आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जाके करते हो। अगर किसी बंदे ने पूरा साल मेहनत की और एग्जामिनेशन हॉल में जाके उसने एफर्ट छोड़ दी, दिल हार गया वहाँ पे, वो घबरा गया, कुछ भी हो गया, तो समझें कि उसने सारे साल की मेहनत ज़ाया कर दी। और अगर कोई बंदा जो है वो पूरा साल एफर्ट पूरी मुनासिब करके एग्जामिनेशन हॉल में जाकर नर्व्स पे कंट्रोल कर गया, ये नर्व्स पे कंट्रोल करने वाला एग्ज़ाम है। ये ऐसा एग्ज़ाम है कि आप जाएंगे, पहला पेपर आप देखेंगे, ये चीज़ मेरी आप लिख लें, यही होगा। आप पहला पेपर देखेंगे, आप देख के कहेंगे यार ये तो मुझे नहीं, मैं तो बस गया। लेकिन प्लीज़ कंट्रोल योर नर्व्स। आप ये सोचिएगा कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। और इन में से अब मैंने आगे जाना है, और कौन आगे जाएगा जो नर्व्स पे जितनी जल्दी कंट्रोल कर लेगा। और ये नर्व्स कंट्रोल जो है ये ना सिर्फ एग्ज़ाम में होगा, पूरी की पूरी आपकी सर्विस में, पूरी की पूरी लाइफ में यही चलेगा। हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन पुट कर दी जाती है कि जिसका आपको नहीं पता, आपने वहाँ पे सिर्फ क्या करना है, अपने नर्व्स पे कंट्रोल करें और एग्ज़ाम जो है वो आपका है और फील्ड जो है वो आपकी। नेक्स्ट, जो इसमें गाइडेंस है वो ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अकेडमीज़ में ही जाया जाए। एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है उन्हें आप, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जितने भी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो ये यूनिवर्सिटीज़ में कोई से फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उनकी बात कर रहा हूँ जो जस्ट सीएसएस के लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। लाइक एज लाहौर में आप आते हैं तो यहाँ पे आप इंग्लिश के देखेंगे 3-4 बंदे आपको नज़र आएंगे जो सीएसएस के लिए पढ़ाते हैं। आप बाकी सब्जेक्ट्स को लेंगे 3-3 एक दो दो बंदे होंगे आप उन्हीं के पास जो है जितना मैक्सिमम। और गाइडेंस के हवाले से, चूँकि आईएसओ पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा जो है वो इनिशिएटिव लिया है, उसमें शजर भाई हैं ब्रादर और बाकी दोस्त अहबाब जो हैं वो बड़ी इसमें एफर्ट कर रहे हैं, और इसी गाइडेंस के सिलसिले में आज आपका ये फोरम और मुझे जो बुलाया गया वो भी इसी का ही एक पोर्शन है। इसमें यू आर द लकीस्ट पर्संस कि आपको गाइडेंस के हवाले से आपका ये मकतबा फ़िक्र, आपके ये जो फोरम है ये अवेलेबल है। इसमें शजर भाई हैं वो इस पर बड़ी एफर्ट कर रहे हैं आईएसओ के हवाले से, और भी काफ़ी, और इवन पिछले दिनों आप में से भी शायद किसी ने जो है वो जो हमारा इनिशियल टेस्ट हम जो कंडक्ट करवाते हैं आप में से भी शायद जो है वो किसी ने उसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया हो, वो भी इंशाल्लाह रिज़ल्ट जो है वो मंडे ट्यूसडे तक हम अनाउंस कर रहे हैं। उसमें जितने भी वो आएंगे लोग, क्योंकि हम उसे देख रहे हैं कि कौन जो है वो डिज़र्व करता है कि उसे पहली फुर्सत में ही हम जो है वो लें, और जितना हो सके हम उसे जो है वो गाइड भी करें, हेल्प आउट भी करें। तो इस हवाले से, गाइडेंस के हवाले से मत घबराइएगा। अगर आपने कमिटमेंट कर ली अपने आप के साथ तो गाइडेंस के लिए आपके पास फॉरम है, गाइडेंस के लिए लोग आपके पास मौजूद हैं, वी आर अवेलेबल। जस्ट ये है कि आपने अपने आप को तैयार करना है। नेक्स्ट, ये तीन चीज़ें हैं, ये नोट कर लें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और ये वही चीज़ें हैं जो मैंने पहले आपको बता दी। टाइम मैनेजमेंट इसमें आपने करना है, ये नहीं है कि मैं पढ़े जा रहा हूँ, क्या पढ़े जा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। कमिटमेंट, सीरियसनेस आपने काज के साथ कि मैंने ये करना है तो बस मैंने करना है। ये नेक्स्ट, ये टाइम मैनेजमेंट, ये लास्ट पे जाइएगा। टाइम मैनेजमेंट दो जगहों पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन और ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन हॉल। मुझे दुख होगा, बहुत दुख होगा कि आप में से लोग पेपर में जाएं, इंशाल्लाह जाएंगे, और आप में से लोग वापस आके ये कहें कि सर मेरे से एक क्वेश्चन छूट गया। ये चीज़ नहीं, और होता ऐसे ही है क्योंकि वो क्वेश्चन इतने वो वास्ट पूछ लेता है, इतना वो चीज़ों को, ज़्यादातर चीज़ें, यानी एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 चीज़ें आपको डिस्कस करना होती हैं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट मस्ट बी योर फर्स्ट एंड टॉप प्रायोरिटी। टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे, नेक्स्ट आप, आपके क्वेश्चंस, अच्छा आपका देखें ड्यूरिंग पेपर आपने टाइम अपना कैसे मैनेज करना, ये क्वेश्चन है ना। आप देखें कि
फाइव क्वेश्चन में, उनमें से एक तो आपने कर लिया, वो है एमसीक्यूज, वो तो क्या, बाकी फोर बच गए, 40-80 मार्क्स हैं, चार क्वेश्चन हैं, टोटल टाइम है आपके पास, उसे डिवाइड करें 10 मिनट्स उसमें से निकाल दें टोटल में से, जो जो आपने बाद में पेपर को रिवाइज करना है, जो देखना है उसे, बाकी डिवाइड कर दें। और चीज़ आपने करना काम क्या है, डिवाइड कर दिया आपने उसको, अपना टाइम दे दिया कि ये 35 मिनट्स एक क्वेश्चन के हैं, ये मैंने दे दिया। जो सबसे सबसे जो कह लें कि इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, हमारे कंट्री में क्या होता है, पॉलिसी हम बनाते हैं, लॉ हम बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। आप भी वहाँ पे क्या कर रहे होंगे, आप 35 मिनट्स तो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आप इम्प्लीमेंट बड़ा कम कर रहे होंगे। पहले क्वेश्चन को आप देंगे ज़्यादा टाइम, 40-50 जो है वो मिनट्स दे देंगे, बाद में वो कम पड़ जाएगा। तो जब आपका टाइम पूरा हो जाए बस उसे कंक्लूड करें और अगले क्वेश्चन पे चले जाएं, यही इसके कारण है। और कोशिश करें कि अपनी अभी से राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करें, अपनी स्पीड इम्प्रूव करें, जितना तेज़ लिखना है लिखने की आदत डालें, वो जो है वो आपको एग्जाम में हेल्प आउट करेगी।